संक्षेप में कहानी बताऊंगा इसकी। छह गोस्वामी थे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उसमें से सबसे छोटे उम्र के गोस्वामी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। अकेले साउथ इंडियन थे, श्रीरंगम में रहते थे तमिलनाडु में, द ओनली यंगेस्ट गोस्वामी आउट ऑफ सिक्स वो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनके उम्र के 5 साल के अवस्था में जब वो थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में चतुर्मास्य के लिए गए और 4 महीने भगवान ने उनके घर में निवास किया। 4 महीने दिन भर चैतन्य महाप्रभु श्री रंगनाथ के मंदिर में कीर्तन किया करते थे और रात भर घर में इस गोपाल के सामने, गोपाल के पिताजी वेंकट भट्ट के सामने और पिताजी के भाई प्रबोधानंद सरस्वती उनके सामने बैठकर रात भर कथा करते थे। 4 महीने 4 महीने के पश्चात जब जाने का समय हुआ तो गोपाल जो था वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त हो गया था, उनके साथ ही जाने लगा। 5 साल का बालक, देखो इसलिए कहते हैं कि कौमार आचार्यत प्रज्ञे, बालक को 5 साल के अवस्था से भगवान की भक्ति में शिक्षा देना आरंभ करना चाहिए। ये बुड्ढे लोगों की बात नहीं है, लोग सोचते हैं कि बुड्ढे होने के बाद में भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि 5 साल से बच्चे को भगवान के विषय में शिक्षा देना आरंभ करना चाहिए। बचपन में जो शिक्षा प्राप्त करेगा वही बुढ़ापे में काम आएगा, बुढ़ापे में कोई नया ट्रिक नहीं सीख सकते हम लोग। इट इज सेड इन इंग्लिश दैट यू कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग। अगर कुत्ते को कुछ सिखाना है तो पिल्ले को लाना पड़ेगा और कुछ ट्रिक सिखाना पड़ेगा, वो समर सॉल्ट करना है, कूदना है, उल्टा सुल्टा आग में से कूदना है, बच्चा कुत्ता कर सकता है, बुड्ढा कुत्ता नहीं कर सकता है। तो कोई भी चीज़ सीखना है उसके लिए बाल्यकाल जरूरी है। तो ये बाल्यकाल में 4 महीने का भगवान का साक्षात संग मिला उसको, तो बड़े आसक्त हो गए, उनके साथ ही जाने लगे। तो स्वयं भगवान ने उसको कहा, गोपाल अपने माता पिता की सेवा करना आवश्यक है, जब माता पिता की सेवा पूर्ण होगी, उनका शरीर पूरा हो जाएगा, तब तुम वृंदावन में आना, तब मेरा संग प्राप्त होगा। तो इतना छोटा बालक, इतनी समझ अच्छी थी उसको, अब मन कह रहा है कि भागो इनके पीछे, लेकिन उपदेश कह रहा है कि रहो यहाँ पर, तो उपदेश को मानकर वहीं पर रह गए। हमको ये देखना है अपना मन क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्या कहा जा रहा है आपको, क्या उपदेश मिला हुआ है, क्या आदेश मिला हुआ है, उसको पालन करना जरूरी है। मन की इच्छा को बाजू में रखे, गुरु जी के उपदेश की पाणी को पालन करना चाहिए। छोटा सा गोपाल रुक गया, जवान हो गया, माता पिता बूढ़े हो गए, एक दिन उनका अंतर्धान हो गया। पूरे जीवन भर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार माता पिता का सेवा किया उन्होंने और ध्यान दोनों का हो गया, दोनों का शरीर पूरा हो गया। तो फिर ये वृंदावन में चले गए। उस जमाने में कोई बैलगाड़ी या मोटर कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर नहीं था, उस समय पैदल जाना होता था। फिर श्रीरंगम किधर है मालूम है आपको? ट्रेन से भी एक दिन लगता है जाने के लिए, मुंबई से यहाँ से एक दिन लगता है और मथुरा जाने के लिए। तो कितना महीने सफ़र किया होगा उन्होंने, सफल करते 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 वृंदावन पहुँचे। जब वृंदावन पहुँचे तो मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में नहीं है, तो जगन्नाथपुरी में है, लेकिन आदेश हुआ था वृंदावन में जाने का, जगन्नाथपुरी का आदेश नहीं था। मन कहता है जगन्नाथपुरी चलो उनको मिलने के लिए, आदेश कहा है कि वृंदावन में जाओ, तो वृंदावन में गए। बहुत विरह में रहे वहाँ पर, दुख में रहे बहुत। चैतन्य महाप्रभु को खबर पहुंची कि गोपाल भट्ट जो है वृंदावन पहुंच चुके हैं, बड़े रो रहे हैं रोज याद करते हुए। तो अपना बैठने का आसन जो है ना वो उनको भेजा उन्होंने सांत्वना के लिए। कुछ थोड़ा शांत हो गया मन उनका, ज़्यादा शांत नहीं हुआ लेकिन कुछ थोड़ा सांत्वना प्राप्त हुई। फिर भी विरह की अग्नि बहुत व्याकुल कर रही थी उनको। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि आप नेपाल चले जाओ, वहाँ गंडकी नदी में मेरा आपको दर्शन होगा। तो ये फिर पैदल गए, नेपाल गए, पशुपतिनाथ का दर्शन किया। और वहाँ पे और आगे जाकर एक जगह है, आज के तारीख में वो जगह पोखरा कहते हैं, पोखरा एयरपोर्ट भी है वहाँ पर। पोखरा के आगे 4 घंटे का गाड़ी का रास्ता है पहाड़ों में, वहाँ पर गंडकी नदी है, काली गंडकी नदी। तो वहाँ तक गए वो, और नदी में स्नान करने के लिए उतरे। तो आमतौर पर क्या होता है, हम लोग स्नान करते हैं, फिर आचमन करते हैं, फिर जल को छूकर गायत्री जप करते हैं, कमंडल में पानी लेते हैं, बहुत सारा विधि करते हैं हम लोग ब्राह्मण लोग। तो वो जब कमंडल लेके पानी में डुबाया तो पानी में कुछ शिलाएं प्रवेश कर गई। अभी शिला जो होती है वो कहाँ होती है बताओ, नदी में नीचे होती है, तल में होती ना। पत्थर कोई तैरता है क्या पानी में? केवल राम जी का पर्वत पत्थर तैरा था, बाकी सब पत्थर तैरते नहीं है। जितने पत्थर होते हैं वो जमीन के पास में होती है, ऊपर नदी होती है और नदी के तल में होते हैं। तो ये तैरते हुए शिलाएं उनके कमंडल में प्रवेश किया, तो उनको लगा बाय चांस हो गया होगा, तो वापस डाल दिया उन्होंने। दूसरी बार पानी लिया, दूसरी बार भी शिलाएं प्रवेश कर गई, दूसरी बार वापस डाला उन्होंने। तीसरी बार जब प्रवेश किया, प्रयत्न किया, तो तीसरी बार 12 शिलाएं प्रवेश कर गई। उस समय आकाशवाणी हुई, मैंने कहा था ना कि मेरा दर्शन होगा आपको, ये शालिग्राम शिलाएं है, ये साक्षात मैं हूँ। इसलिए उनको ये मत समझना कि ये बाय चांस तुम्हारे कमंडल में आ गए हैं, ये मेरी इच्छा है। इसकी वजह से तल से उठकर तैरते हुए ये 12 शिलाएं तुम्हारे कमंडल में प्रवेश कर चुकी हैं, इनको वृंदावन लेके जाओ, उनका पूजन करो, जमुना जल तुलसी और चंदन से उनकी सेवा करो। तो फिर ये वहाँ से भगवान की कृपा को समझते हुए 12 शिलाओं को लेकर वृंदावन आए, जहाँ पर पहले थे वहाँ पर उनका सेवा आरंभ किया उन्होंने। शालिग्राम शिला ना बहुत पावरफुल होती है, उसकी सेवा कोई स्वीकार करेगा ना तो उसको छोड़ नहीं सकता है वो कभी भी। इसलिए लेने के पहले, प्राप्त होने के पहले बहुत विचार करना चाहिए कि कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे दुनिया में आपको शिला आपके साथ लेके जानी पड़ेगी, और जहाँ पर भी आप रहेंगे आपको कम से कम गंगा जल तुलसी और चंदन से उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और कम से कम एक बार भोग लगाना पड़ेगा। तो लोग कैरी करते हैं अपने बास्केट में उनको, साथ में ड्राई फ्रूट और फ्रूट सब लेके जाते हैं, उनकी उनके पूजा का साहित्य लेके जाते हैं। उनको स्नान करना पड़ता है, तेल से, सुगंधित तेल से मालिश करना होता है, दूध का अभिषेक करना होता है, फिर चंदन से उनकी आँखें दाँत सब निकालते हैं, उनको भोग लगाते हैं। बहुत दिन सेवा किया, 12 शिला 12 जगह पर स्थापन करके उनका सेवा करते थे, उनको शयन करते थे, उनको उठाते थे, उनको भोग लगाते थे। एक दिन एक धनी आदमी आया, बहुत दानशूर व्यक्ति आया, और उस समय गोस्वामी लोग सब वृंदावन में रहते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्यामानंद गोस्वामी सब रहते थे उधर। तो सबको उस व्यक्ति ने उनके उनके भगवान के लिए पोशाक बांटे, दामोदर जी के लिए बांटे, जीव गोस्वामी के दे दिया, श्यामा सुंदर जी को दे दिया, श्यामानंद गोस्वामी को, मतलब पोशाक है, अलंकार है, मुकुट है, मुरली है, सब कुछ वस्त्र दे दिया, अलंकार दे दिया। तो सबको देके इनके पास आए और इनको भी देने लगे। तो गोपाल भट्ट जी क्या कहते हैं, अरे हमारे ठाकुर जी तो गोल बटोल है, उनको तो हाथ पैर है नहीं, तो आप मुझे पोशाक देंगे, लहंगा देंगे, फरिया देंगे, तो कैसे पहनाऊंगा उनको? तो बोलते नहीं नहीं, मैंने आपके लिए लाया है तो आपको लेना ही पड़ेगा, मैं उसको लेके वापस नहीं जाऊँगा, मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको लेना ही होगा। तो जैसे ही वस्त्र स्वीकार किए तो इनके मन में इच्छा हुई, काश मेरे ठाकुर जी को अगर अंग होते तो मैं भी उनको पहनाता, लेकिन क्या करें, वो तो गोल मटोल है। ऐसे विचार मन में आया कि अगर उनको अंग होते तो मैं भी उनकी सेवा करता, वस्त्र पहनाता, श्रृंगार करता। तो ऐसे दिन बीत गए, वो वस्त्र पड़े रहे, अलंकार पड़े रहे, और नरसिंह चतुर्दशी का दिन आया, वैशाख महीने की शुद्ध चतुर्दशी, जिस समय नरसिंह भगवान ने खंभा तोड़कर अवतार लिया था प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो हमारे गौड़ी संप्रदाय में ऐसा रिवाज है, कोई भी उत्सव होता है ना, अभी जो राम भगवान का आविर्भाव हुआ या, तो हम लोग उसको मनाते हैं, रामनवमी, नरसिंह जयंती, कुर्म जयंती, वराह जयंती हम मनाते हैं। और उस दिन श्रीमद् भागवत से वो कथा हम लोग पढ़ते हैं, उस पर प्रवचन भी करते हैं, वो अध्याय खोलेंगे, वो पूरा पढ़ेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे, लोगों को समझाएंगे और भोग लगाएंगे भगवान को, भगवान का अभिषेक करेंगे, सबको महाप्रसाद बांटेंगे, कीर्तन करेंगे। तो ऐसे ही रिवाज से गोपाल भट्ट गोस्वामी उस शालिग्राम शिला जहाँ रखी हुई है वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पर उत्सव मनाने का प्लान करते हैं कि नरसिंह भगवान का आविर्भाव का उत्सव मनाएंगे। तो वो ग्रंथ खोलते हैं भागवतम और सप्तम स्कंद से पूरी कथा पढ़ते हैं, प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ते हैं, हिरण्यकश्यप का वध, नरसिंह भगवान का अवतार, हिरण्यकश्यप का वध, सब कथा पढ़ते हैं। उसके अंत में जब पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या लिखा उसके अंदर, हिरण्यकश्यप पूछ रहे हैं प्रहलाद को, तुम्हें शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहते हैं, पिताजी जिस जगह से आपको शक्ति प्राप्त होती है वहीं से मुझे भी प्राप्त होती है। मतलब उत्तर स्ट्रेट नहीं दे रहे, थोड़ा तो घुमा फिरा के दे रहे, फिलोसॉफिकल आंसर दे रहे। तो उनको और गुस्सा आता है, कौन है वो? भगवान है। कहाँ है तुम्हारे भगवान? तो वो कण कण में समाए हुए हैं, सब जगह पर है। क्या इसका जवाब नहीं देता है, मतलब इस खंभे में है क्या? इस खंभे में भी है, अगर कण कण में तो खंभे में भी है। एक हाथ में तलवार है, हाँ, और एक हाथ में ऐसा मुष्टि धारण करते, ऐसे मुष्टि बनाते, बोलते अभी मैं तुम्हारे इस खंभे को जिसमें तुम्हारे भगवान है उसको मुक्का मारता हूँ और चकनाचूर कर देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे भगवान कैसे आते हैं और बचाते हैं तुमको, देखता हूँ मेरे सामने तुम्हारे भगवान कैसे बचाते हैं, कैसे होते आते हैं और कैसे बचाते हैं। ऐसे बोल के एक हाथ में तलवार है जो बच्चे को मारने के लिए उठाई है, और बाएं हाथ से वो खंभे को मुष्टि प्रहार करते हैं, तो वो खंभा टूट कर उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। वो इसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य है, उसने क्या पूछा, इस खंभे में भी है क्या? तो भगवान ने कहा, प्रहलाद ने कहा कि है, खंभे में भी है। तो कहते हैं प्रहलाद के एक इशारे में तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए। तत्क्षण मतलब क्या, उसी क्षण, कोई प्लान नहीं था पहले कि मेकअप करके रेडी थे वो, आधा सिंह का शरीर, आधा शरीर का सिंह का मुख, आधा इंसान का शरीर करके मेकअप करके रेडी थे वो, कि आना है चतुर्दशी का दिन है, प्रकट होना है, ऐसा नहीं है, कोई प्लान नहीं था। प्रहलाद के कहने से तत्क्षण प्रकट हो गए, ये भक्त की शक्ति है। भक्त की इच्छा से भगवान उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। उन्होंने कहा खंभे में है, तो वो खंभे में प्रकट हो गए। कहते हैं कि तुरंत भगवान खंभे में प्रकट हो गए, आधा सिंह आधा मनुष्य बन के तैयार हो गए कि मेरे भक्त ने कहा है तो मुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही अगले क्षण में हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया तो नरसिंह भगवान ने गर्जना करते हुए अवतार लिया। तो एक क्षण के लिए हिरण्यकश्यप पीछे हट गए, ये क्या चीज़ है, अपने आप को संवारा उसने, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी कुछ कम नहीं, देख लूंगा, ऐसे करके युद्ध शुरू किया। लेकिन उन्होंने देखा, अरे ब्रह्मा की 84 लाख योनि में ऐसा कोई योनि नहीं है, आधा सिंह और आधा मनुष्य कोई है नहीं। बहुत बड़ा युद्ध हुआ उनका, फिर संध्या के समय भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब ये कथा पढ़ रहे वो, तो जैसे उन्होंने पढ़ा ना कि प्रहलाद के एक इशारे में तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए, तो मन में ऐसा विचार आया कि प्रहलाद के एक इशारे में तत्क्षण भगवान खंभे में प्रकट हो गए तो हमारी शालिग्राम शिला से क्यों नहीं हो सकते। ऐसे मन में विचार आया, मन में तो विचार आते रहते, छोड़ दिया विचार ऐसे ही। रात को शयन कराया भगवान को, रुमाल पहनाया सबको, शयन कैसे करते हैं, तुलसी निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं, रुमाल पहन के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान आराम कीजिए आप, और शयन कराते हैं। सबको शयन कराया, 12 शिलाओं को शयन कराया और खुद भी सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो एक रुमाल जो ऐसा था वो ऐसा हो गया, समझ आपको है? सभी वो शिला जैसे जैसे आलू की तरह है ना, आलू कैसे रहते हैं, ऐसा आलू रहे, अपने रुमाल पहना है उसके ऊपर, तो वो ऐसा बिछा हुआ रहेगा ना गोल, लेकिन एक खड़ा था रुमाल, 12 में से 1 रुमाल खड़ा हो गया पूरा, ऐसा टोकदार में खड़ा हो गया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, तुरंत जमुना जी में गए, तुरंत स्नान करके लौट के आए, वो देखा तो क्या, भगवान का शयन उठाया, उत्थापन किया, उनको जगाया, तो देखते हैं कि एक शिला में से सामने से भगवान प्रकट हो गए हैं, 12 अंगुली के आकार के दामोदर नाम के शिला के अग्रभाग से पूरा वैसा ही शरीर भगवान का प्रकट हो, और वो हमारे राधा रमन भगवान है। ये जो फोटो है ना फोटो, ये भगवान के आकार से 2.5 गुना बड़ा है, ये एनलार्ज किया हुआ फोटो है, लेकिन भगवान का विग्रह इससे 2.5 गुना छोटा है। आप 12 उंगली जोड़ेंगे ना ऐसे, 12 उंगली उसी आकार के। तो इतने सुंदर अंग थे, शालिग्राम जैसे काले रंग के, सादे रंग के, चिकने चिकने उनके शरीर के, इतने महीन अंग थे, फाइनली डेवलप्ड उनकी उंगलियां, उनकी बांसुरी, उनके पैर, कदम त्रिभंग अवस्था में खड़े हैं, इतने सुंदर उनके अंग बने थे, छोटे से थे लेकिन बहुत सुंदर थे। तो गोपाल भट्ट को बहुत आनंद हुआ, उन्होंने सभी गोस्वामी को बुलाया, क्योंकि छोटे थे ना वो, बड़ों को बुलाया, उन्होंने दर्शन कराया, देखो ऐसे चमत्कार हुआ है मेरे मंदिर में। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मदन मोहन जी के चरण इनके चरण के समान है, गोविंद जी के छाती जो है इनकी छाती के समान है, गोपीनाथ का जो मुख है वो इनके मुख के समान है। तो तीन विग्रह में तीन चीजें हैं, वो तीनों चीजें एक ही विग्रह में यहां पर प्रकाशित है। तो रूप गोस्वामी ने, जो सबके नेता थे, उन्होंने इन भगवान को नाम दिया राधा रमण देव भगवान। तो नरसिम्हा चतुर्दशी के अगले दिन यानी वैशाख शुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका आविर्भाव हुआ भोर के समय। जैसे प्रहलाद के एक इशारे में प्रकट हुए खंभे में, वैसे इनकी इच्छा के वजह से शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि आपको बहुत कम समय है, बिल्कुल भी समय नहीं, आपको 10 मिनट का समय है, आपको एक दर्शन करना मुमकिन है। अगर आपको एक ही दर्शन करने का समय है तो आपको राधा रमण जी के मंदिर में जाना चाहिए, तो आपका पूरा वृंदावन का दर्शन उसमें हो जाएगा। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सबका दर्शन इनके अंदर है। लोग दूरबीन लेके जाते हैं, उनके एक एक अंग को देखते हैं। इनकी एक विशेषता है, वृंदावन में कभी भी कोई ड्रेस दोबारा नहीं पहनते हैं, कभी कभी एक एक दिन में 3-3 ड्रेस पहनते हैं, 3-3 श्रृंगार करते हैं, लेकिन कोई भी ड्रेस उनका दोबारा नहीं पहना जाता है, सब भक्तों को बांट देते हैं प्रसाद के रूप में। इतना ऐश्वर्य है इनका, इतना सुंदर श्रृंगार कर, देखिए आप इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं उनका, इतना सुंदर स्वरूप है इनका कि आप देखते ही रह जाएंगे, कभी आंखें नहीं हटा सकते उनके ऊपर से, इतना सुंदर स्वरूप है उनका। राधा रमण देव भगवान की। जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ था ना, तो ये एक ही ऐसे भगवान है जो जयपुर नहीं गए, क्योंकि छोटे थे ना वो, उनको छुपा दिया बिस्तर के नीचे। वैसे वो राधाकुंड गए हुए हैं, राधाकुंड में कुछ समय रहे और राधाकुंड से लौट के आए, और ये ओरिजिनल भगवान आज भी वृंदावन में है, बाकी ओरिजिनल सब डीटी जयपुर चली गई है, उनकी प्रतिभू मूर्तियां वृंदावन में फिर नई मूर्तियां विराजमान की गई है। ये भगवान बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी, ये ओरिजिनल मूर्तियां हैं जो आज अपने स्थान पर विराजमान है, और इनके अंग में राधा रानी विराजमान है। इनको देखो चोटी बनाते हैं, चोटी दिख रहे हैं आपको, वो चोटी जो है वो राधा रानी का प्रतीक है, राधा रानी इनके अंग में समाई हुई है, ऐसे विशेष भगवान है ये। इनकी बहुत अद्भुत लीला है, इनका स्वभाव ऐसा है कि इनके पास आप हृदय से कोई इच्छा प्रकट करोगे ना तो वो पूरी कर देते हैं, लेकिन प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए, स्वार्थी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हृदय से उनके विषय में, उनकी सेवा में आप इच्छा प्रकट करोगे तो ये तत्क्षण पूरी करेंगे, ऐसा इनका लौकिक है। जैसे प्रकट हुए हैं वो इच्छा पूरा करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो आगे जाकर भी हमारे गुरु जी के जीवन में भी ऐसी कहानियां हैं कि आज हमारे गुरुदेव अगर भारत में हैं तो इनकी कृपा से है। समय आपके पास 5 मिनट का, क्या बात है, गीता जो टाइम है। ऐसा था, हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जिन्होंने ये सब वृंदावन यहाँ प्रकट किया है, ये सब सारे स्थान जैसे कि वैसे हूबहू यहाँ प्रकट किए हैं हम सब लोगों को वृंदावन का अनुभव देने के लिए। तो एक समय पे उनकी उम्र 19 साल की थी और तब वो वृंदावन में आए थे भगवान को खोजते हुए, और यहाँ पर उनको साक्षात्कार हुआ भगवान का। तो ये ऐसा अनुभूति हुई कि यही भगवान का धाम है, यही कृष्ण भगवान ही भगवान है। उस समय पूरे वृंदावन में कोई फॉरेनर नहीं था, ये अकेले फॉरेनर थे, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था असीम कृष्णदास, वो भी अमेरिकन थे, ये भी अमेरिकन थे। पूरे वृंदावन में दोनों अमेरिकन थे और पूरे लोग जो वृंदावन के थे इनको जानते थे, केवल 2 ही फॉरेनर थे ना, सब जानते थे उनको। तो बीच में क्या हुआ, ये भगवान के भक्ति में इतने ब्रह्ममाण हो गए, इतने मग्न हो गए कि भूल गए कि वीजा समाप्त हो गया इनका, याद नहीं रहा वीजा कब समाप्त हो रहा है, लेकिन वीजा समाप्त हो गया, कई महीने बीत गए, तो पुलिस ने अपना रिकॉर्ड देखा तो कहते कि अरे इनका तो समाप्त हो गया कई महीने, तो वारंट निकला उनके नाम से। अभी इनको पता नहीं है लेकिन वारंट निकला तो लोग कहने लगे कि आपको पुलिस ढूंढ रहे हैं, ऐसे ब्रजवासियों ने बताया इनको कि आपका वीसा खत्म हो गया है इसलिए पुलिस आपको ढूंढ रही है। तब इनको ध्यान में आया वीसा समाप्त हो गया वीसा हमारा, तो अभी छुपने लगे, फिर क्या करें, अभी छोड़ के जाने की इच्छा नहीं थी। पुलिस दिन रात ढूंढ रही है उनको वृंदावन में, क्योंकि दो ही फॉरेनर थे ना, एक फॉरेनर तो दूसरा व्यक्ति है, एक व्यक्ति को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्या हो गया, अभी ऐसा हो गया कि वृंदावन की पुलिस छान मार रही थी, इनको ढूंढ रही थी। और इनका रोज का नियम था, जमुना जी के किनारे सोते थे रात को, कोई वस्त्र नहीं कुछ नहीं, एक ही वस्त्र था, कोई बिछाने के लिए शतरंजी बितरंजी कुछ नहीं, जमुना के रेत पर रात को सोना है, ठंड में गर्मी में सब जगह पर उठना है, जमुना जी में स्नान करना है, वो कपड़े धोने हैं, उसको निचोड़ने हैं, उसी को वापस पहनने हैं, और 5 बजे की राधा रमण की मंगलारती में जाना है। वहाँ से बहुत पास में उनका सोने का स्थान था। तो जब बहुत मामला बिगड़ गया, मतलब अभी अगर पकड़े गए तो जीवन भर बैन हो जाएंगे, इंडिया से ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, इंडिया में वापस आने का कोई काम नहीं, तभी तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो उस दिन उन्होंने जमुना जी में स्नान किया, भरी ठंड में कपड़े जमुना जी में धोए, निचोड़े, वही गीले कपड़े पहने ठंड में, और वैसे ही मंगलारती में आए 5 बजे इनके, और मंगलारती में प्रार्थना किया, राधा रमण जी आप सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे वृंदावन से बरी मत करना, मैं ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहता, मुझे भारत में आना है, आपके चरणों में रहना है। ऐसे करके बाहर निकले। उनका और एक नियम था, वहाँ से निकलते थे वो और एक अंधेरी गली से सेवा कुंज होते हुए राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाते थे, वहाँ उनके दोस्त थे राधेश लाल जी महाराज, तभी वो भी जवान थे, गोस्वामी जी ये भी जवान थे, बड़ी अच्छी मैत्री थी उनकी। तो रोज वो राधा रमण की मंगलारती करके राधा वल्लभ जी की मंगलारती करते थे, वो 6 बजे हुआ करते थे, तो अंधेरे में एकदम बिल्कुल मिट्ट अंधार होता था, उसको जाते थे और 6 बजे उनका दर्शन करते थे। लेकिन जैसे ही राधा रमण का मंदिर छोड़कर ये चलकर काई अंदर, वो राधा रमण का मंदिर होने के बाद में फिर वो श्याम सुंदर का मंदिर आता है, फिर दामोदर का मंदिर आता है, बीच में गली आती है, गली में सेवा कुंज आता है। तो जब कुछ देर के बाद में वहाँ पहुँचे, इतना अंधेरा था तो कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और कुछ ही क्षण में कुत्ते के दांत उनके पैर में घुस गए। समझ में आया कि तीखे दांत जो है वो इधर काफ में घुस गए पूरे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मिट्टा अंधेरा है, और देखने गए तो आवाज़ दूर चली गई वो कुत्ते की आवाज़, लेकिन कुत्ते के जो यहाँ पर कुत्ता ने पूरा काटा उसको पूरा। अभी अंधेरे में क्या करेंगे, चलते रहे दिशा में रोज के तरह चलते रहे। तो राधा वल्लभ में मंदिर पहुंचे ना, तब बल्ब था एक थोड़ा सा, पहली बार लाइट दिखाई पड़ा, तो वो जो गोस्वामी थे राधा वल्लभ मंदिर के राधेश लाल जी महाराज, वो कह रहे अरे क्या हो गया पैर को, खून की धार लग रही, देखो पूरे पूरे रास्ते में लार धार लग रही खून की, जो पैर से खून बहते बहते जो है ना वो पूरा रास्ते में मंदिर तक पहुंच गई। तो देखा तो क्या लगा कुत्ता काटा हुआ आपको, ऐसा ही कुछ आवाज आया, दिखा नहीं कुछ लेकिन लगता है कुत्ता काटा हुआ है, तो रेबीज होने की संभावना थी। उन्होंने कुछ मरम पट्टी किया, थोड़ा सा बांध काम किया उधर, थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का काम किया, उनको बताया, देखो मित्र को बताया मतलब हमारे गुरुदेव को, कि आपको रेबीज हो सकता है और कुत्ते की तरह पागल हो जाएंगे आप और मर जाएंगे, इसका एक ही इलाज है, केवल गवर्नमेंट के अस्पताल में आपका उसको पेट में 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। उस समय पर वो नियम था हमारे बचपन में, 14 इंजेक्शन ऐसा पकड़ के ना देते थे इंजेक्शन उसके अंदर, और वो केवल कोई डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा आपको, गवर्नमेंट के पास ही मिलेगा, और गवर्नमेंट का अस्पताल जो है वो मेन मथुरा वृंदावन रोड पे पुलिस चौकी के बाजू में। अभी क्या करना है, जाना तो पड़ेगा, तो गई उधर, तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उनको, डॉक्टर ने बोला कि इनको सुई तो लगाना पड़ेगा, आप अरेस्ट करेंगे ले जाएंगे तो चलेगा नहीं। तो डॉक्टर ने 14 दिन का सर्टिफिकेट दिया कि 14 डेज तक उनको यहाँ पर रखो ऑफिशियली, इलाज करने के लिए तो वो मर जाएंगे। तो 14 दिन के बाद में 14 इंजेक्शन लगाए, फिर उनका जो वीज़ा ख़त्म हो गया था ना, उनको थोड़ा स्टैम्प किया था 14 डेज के लिए। तो ये हमारे गुरु महाराज पंचायत के अधिकारी के पास गए, वहाँ से म्यूनसिपालिटी के अधिकारी के पास गए, वहाँ से मथुरा के DM के पास गए, DM ने उनको आगे सेंट्रल मिनिस्ट्री में भेजा गृह मंत्रालय में, तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भेजते मिलते कहते हैं गृह मंत्री के पास चले गए वो, कि कृपा करके कुछ कीजिए मेरे वीजा को, अगर ये ऐसे ही बैन किया जाएगा मुझे तो कभी भारत में प्रवेश करने के लिए मुमकिन नहीं होगा। उनको पंचायत से लेकर गृह मंत्रालय के सारे अधिकारियों ने मना कर दिया, आपने इतना लेट कर दिया है कि इसको किसी भी तरह से हम रेगुलराइज नहीं कर सकते। लास्ट में इनकी बिनती 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 देखते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को आप मिलो, अब केंद्रीय गृह मंत्री, उनका नाम उनको याद नहीं अभी कौन है वो, केंद्रीय गृह मंत्री को मिले। उनके सामने जाकर रोए कि आप मुझे इंडिया से बरी मत करना। आप उनकी किताब पढ़िए, उनका किताब का नाम है अनोखा सफर जर्नी होम, उसमें कैसे वो इंडिया आए थे उसका कहानी है पूरी, बहुत भयंकर कहानी है। तो इतना कष्ट से मैं भारत में आया हूँ और आज मैं भारत से बरी होने का समय आ गया है, जितनी मेहनत करके मैं इंडिया में प्रवेश किया आज लाइफ टाइम ब्लैकलिस्ट होने की समय आ गया है, तो मैं ये नहीं चाहता, मुझे कृपा करके आप बचाइए, आपके हाथ में। तो पता नहीं उसका चेहरा देख के गृह मंत्री को क्या लगा, उसने पूरा स्टैम्प लगा दिया उसके ऊपर, जितना दिन लेट हो गया था और जितना 14 दिन का एक्सटेंशन था पूरा उसने ऑफिशियल कर दिया, ऑफिशियल स्टैम्प कर दिया और कहा कि ठीक है अभी आपका वीज़ा अभी तक आज समाप्त हो रहा है मुझे, कल आप अपने देश चले जाओ, मैं दोबारा आ सकते हो। तो फिर ये वीज़ा जितने दिन से समाप्त हो गया था पूरा ऑफिशियल हो गया और फिर टिकट निकाल के ये अपने देश में गए और आज भी वापस इंडिया में आए। क्यों? क्योंकि राधा रमन जी के प्रार्थना किया था उन्होंने कि आप ही बचा सकते हो। ये सारा लीला कैसा हो गया, उन्होंने प्रार्थना किया निकले बाहर तो कुत्ता भगवान ने भेजा काटने के लिए उनको, और वो कुत्ते काटने की वजह से पूरा ये इंतजाम हुआ उनका और वो आज भी भारतवर्ष में आ रहे हैं, इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि राधा रमन से हम बहुत ऋणी हैं, उनके बहुत कृतज्ञ हैं इनके। अगर ये नहीं होते तो हमारे गुरुजी भारत में नहीं होते, ना हमसे मिलते ना हम उनके शिष्य बनते, तो इनकी बड़ी कृपा है। आप भी हृदय से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना को जवाब देंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी सब क्या है, श्रद्धा है तो भगवान है, श्रद्धा नहीं है तो पत्थर है, लकड़ी की तो मूर्ति है, उसमें क्या है, श्रद्धा है तो सब कुछ है। और उनको भी क्या जरूरत है, आपको श्रद्धा नहीं तो उनको दिखाने की जरूरत क्या है, आपको श्रद्धा है तो आपको अनुभव दिलाएंगे, वो साक्षात्कार दिलाएंगे, आपको श्रद्धा नहीं तो जाओ मर्दमंदी करो, मेरे को क्या पड़ी, श्रद्धा है तो सब कुछ है। श्रद्धा रखो, भगवान साक्षात हैं, आपको अनुभव देंगे। ये चित्रपट या मूर्ति या लकड़ी की या पत्थर की मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। श्रद्धा रखते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जो व्यक्ति शुद्ध हृदय का है भगवान उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, हमसे नहीं करते, हम लोग शुद्ध नहीं हुए अब तक। लेकिन जो उन पर श्रद्धा रखते हैं और उनका हृदय शुद्ध हो गया है, इनसे मूर्ति के अंदर से संवाद करते हैं और हम लोगों को भी मूर्ति के माध्यम से रोज अलग अलग अनुभव देते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे और प्रेम से देखेंगे तो उनका रोज अलग अलग भाव दिखेगा, रोज के दर्शन में अलग अलग, आज नाराज हैं, आज आनंद में हैं, बड़े खुश हैं, आज सब नजर आएगा आपको। इनका और एक विशेषता है, आपको पता नहीं जचेगा कि नहीं, गोस्वामी जी इनके बहुत सारे हैं, हमारे मित्र हैं, वो तो गोस्वामी जी क्या बताते हैं कि रोज है ना इनके लिए इनके भक्त लोग कई ड्रेस तैयार रहते हैं उनके पास, जो एक बार भी पहना नहीं है। ऐसा नहीं कि आज के लिए दो ही ड्रेस है उसमें चुनना है, ये लाल पहने को पीला पहनो, ऐसा नहीं है। उनके लिए बहुत सारे ड्रेस तैयार रहते हैं जो पहने नहीं कभी आज तक, वो सब बिखार के रखते हैं उनके सामने और कहते हैं इनके सामने एक एक उठा के दिखाते हैं। जैसे आपको पूछ रहे हैं क्या पहनेंगे आप, पीला पहनेंगे या नीला पहनेंगे, तो जो पहनने का उनका दिल है वो जब सामने आएगा तो वो दांत दिखाते हैं अपने। राधा रमन जी जब गोस्वामी दांत देखते हैं उनके, मुस्कुराहट देखते हैं, तो वो ड्रेस उनको पहना देते। एक दिन एक गरीब औरत थी, एक बहुत गरीब औरत थी, उसने ना केवल सूती वस्त्र सिला के दे दिया इनके लिए, उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, कुछ काम नहीं किया हुआ है, कुछ भारी खड़े लगाए नहीं है, खाली देखो वस्त्र कैसे उनके होते, देखो बहुत सारे काम किया ना उसके ऊपर, भारी काम किया है कि नहीं। तो बेचारी गरीब औरत थी, उसने अपना सफ़ेद वस्त्र लिया और सिला दिया अपने हाथ से और दे दिया उनको। तो भगवान को सब वस्त्र दिखाए, भगवान ने दांत नहीं दिखाए, बोला क्या हो गया आज इतने वस्त्र तैयार हो गए, किसी को पहनने को मूड नहीं है। तो किसी ने कहा कि वो वस्त्र दिखा दो, वो मैया ने दिया था ना गरीब माता जी ने, उसको दिखा दो। पता नहीं क्या दिल में उनके, सारे भरजरी वस्त्र बना कर दिए उन्होंने, किसी को सिग्नल नहीं दिया, और जैसे ही सूती वस्त्र दिखाया दांत दिखा दिए, उसे सूती वस्त्र पहनाया गया उनको। क्योंकि भगवान है ना, ऐश्वर्य के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे, यहाँ प्रेम है उनको, बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तो बाकी सारा ऐश्वर्य उनका ही है जो आपको दिया है उन्होंने, है ना। अभी खड़े हैं, सोने का अगर वर्क लगाया आपने और कुछ झालर लगाई है उसको, जरी का कुछ बॉर्डर लगाया, सब उनका ही दिया हुआ है, उसमें आपका क्या है। आपका अगर कुछ है तो वो प्रेम है, और वो प्रेम आपका ओरिजिनल है, आपके हृदय से प्रकट हो गया है, उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ पर जो है ना वो सब हृदय का खेल है, कोई ऐश्वर्य का और अपने प्रभाव का धन दौलत का खेल नहीं है। यहाँ पर कोई कीमत नहीं उसकी, यहाँ पर भगवान के सामने, भगवान के सामने केवल हृदय का मामला है। दिल से जोड़ो और दिल से अनुभव करो। राधा रमण भगवान की जय।